ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर अभी गीत बजा था, एक खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। बहुत सारे सवाल थे और शायद आज मनुष्य के मन में ये सारे सवाल है, क्योंकि जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, साइंस भी स्वीकार करता है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया के अंदर अनेक मत मतांतर हो गए हैं, और इसीलिए ईश्वर को लेकर के इतने सारे कंफ्यूजन हो गए हैं कि जितना ही उस सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं उतना ही कहीं उस सत्य से दूर तो नहीं जा रहे हैं। और इसीलिए आज आवश्यकता पड़ी है कि वो परम सत्य क्या है, उसको जानने की, समझने की। कुछ समय पहले एक बहन मेरे पास में आकर कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी मां से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं। मां ने उसको जवाब दिया कि बेटे ये सारे भगवान हैं। उसने कहा भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान अगर है तो हम अपने मन को एकाग्र कहां करें, किस पर करें। आज एक परिवार में भी हेड ऑफ द फैमिली होता है, परिवार का मुखिया होता है। अगर ये सारे भगवान है तो इन सबका मुखिया कौन है, उन सबका हेड कौन है। वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, और इसीलिए जब भी वो मां अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई खास त्योहार होता है, कोई ओकेजन होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं अपने मन को कहां लगाऊं, इसीलिए वो मंदिर नहीं जाता। मां को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है, लेकिन उसके सारे प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं है। तब कहा कि आज इसकी आवश्यकता पड़ी है कि ये समझे, ताकि आज की एक युवा पीढ़ी को हम सभी मिल करके सही गाइडेंस दे सके। लेकिन एक क्लैरिटी हमारे अंदर भी तो हो, क्योंकि नहीं तो उसको गाइडेंस नहीं मिला ठीक से तो कहीं वो ईश्वर के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो आस्था भी उसकी न रहे और विपरीत न हो जाए। भावार्थ ये कि आज ये जानना आवश्यक हो गया है। एक बहुत सुंदर कार्टून आया था हमारे सामने एक बार कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था वो कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है, पांचवी कॉलम में लिखा था वो नाम रूप से न्यारा है, न नाम है न रूप है न आकार है, निराकार है, छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हैं सब परमात्मा है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच ईश्वर है तो क्या उसका सबूत है? और भी कई मते हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, सत्य क्या है? क्योंकि सत्य एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे सभी सत्य है, असंभव। और ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को कहे? क्या ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे? क्या निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे? सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी सत्य है या इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? और इसीलिए सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। वो कहानी याद आ रही है कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन कर लिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है, पंखे जैसा है। आखिर सत्य क्या है? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूं कि ये 5 सूरदासों को कहा गया कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, आपने जो महसूस किया वो आपको जाकर उसको बताना है। उसने महसूस नहीं किया है। अब ये 5 1 by 1 जाते हैं छठे सूरदास के पास और हाथी का वर्णन करते हैं। पहला सूरदास कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा, पंखे जैसा है। ये पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा, आखिर हाथी है कैसा? कितना कंफ्यूज होता रहेगा कि हर कोई आता है, अलग बात बता रहा है, आखिर ये प्राणी है कैसा? लेकिन फिर भी विश्वास कर लेता है कि ये पांच ने तो महसूस किया है ना, सही बोल रहे होंगे, होगा ऐसा कोई प्राणी जो घड़ी घड़ी रूप बदलता होगा, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, तुमने जो समझा हाथी कैसा है वो आपको उनको जाकर बताना है। ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और उनको जाकर बताता है कि देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने महसूस किया है, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है, कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता है, कभी तो वो दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो रस्सी जैसा हो जाता है, कभी वो सांप जैसा हो जाता है, और कभी वह सूप जैसा, पंखे जैसा हो जाता है। सातवां सूरदास कि आईक्यू लेवल हाई था, उसने कहा, कैसे मान लिया तुमने कि हाथी बहुरूपिया है? अरे थोड़ा तो सोचो तुम, क्या सचमुच कोई प्राणी घड़ी घड़ी अपना स्केलेटन बदल सकता है क्या? हाँ, कोई रंग बदल सकता है ये मान सकते हैं, लेकिन पूरा ढांचा ही बदल दे, हाउ कैन यू बिलीव दिस? उसने कहा, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। सातवां सूरदास कहता है, मैं नहीं मानता कि पूरा स्केलेटन बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं मानो, कहीं आज मनुष्य की हालत भी ऐसी तो नहीं हो गई है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना से ईश्वर का अनुभव करना चाहा, पुरुषार्थ किया, तपस्या की, हर एक ने कुछ अनुभव किया और वो अनुभव उन्होंने मनुष्य के साथ साझा किया, शेयर किया कि देखो भाई, ईश्वर ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है। मनुष्य ने विश्वास कर लिया। अब वो मनुष्य आज की जेनरेशन को समझाना चाहते हैं, ये सब ईश्वर है। आज का जेनरेशन का बच्चा जिसका आईक्यू लेवल हाई है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, एक बात कहो ना, ईश्वर एक होना चाहिए? ये तो इतना कंफ्यूजन है कि आखिर सत्य क्या है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि सत्य को जितना सिंप्लीफाई किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सत्य अपने आप में सरल है। सत्य अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो उसको समझना तो दूर लेकिन उसके समीप जाना भी कोई नहीं चाहता है। सत्य सरल है, सहज है। तो आखिर वो सत्य को परखने की कसौटी, आज हम आपको ये नहीं कहेंगे कि जो ब्रह्मा कुमारीज ने बताया वो आपको मानना है, नहीं। आज हम आपको कुछ कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य की ओर कदम बढ़ाए। और ये कसौटी है पांच बातें। सत्य किसको कहा जाता है? सबसे पहली बात, सत्य उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो। गॉड इज वन, ईश्वर एक है, सत्य एक है। तो जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन। उसको सभी स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए, वो सर्व का माता पिता है। उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, वो सर्व का सदगुरु है। तो जिसके ऊपर कोई नहीं, सुप्रीम अथॉरिटी, उसको कहेंगे परमेश्वर। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र। परमात्मा इन सभी चक्र से ऊपर है, अजन्मा, अकाल मूरत, जिसको काल कभी न खा सके, तो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जब जन्म ही नहीं है तो न देह है न देह के संबंध है, और जब देह नहीं है तो न कर्म है न कर्म का फल है। जब कर्म ही नहीं है तो न पाप है न पुण्य है, और जब पाप पुण्य नहीं है तो न सुख है न दुख है। जो सभी चक्र से ऊपर है उसको कहेंगे परमेश्वर। चौथी बात, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ हो, ज्ञाता हो, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, जो मनुष्य को भी ज्ञान के तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला हो, दिव्य चक्षु विदाता। तो ये तीन की महिमा भी उसके साथ जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। ये पांच बातें हैं कसौटी, जिस पर एक एक मत को अगर कसकर देखे कि सत्य है। पहली बात, जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को परमेश्वर के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या कहेंगे? हाँ, रचना है कहना सत्य है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं है। तो सत्य ये है कि प्रकृति परमेश्वर की रचना है। आगे बढ़े, ये क्लियर हो गई बात कि प्रकृति परमेश्वर नहीं है, रचना है। दूसरी बात, जब हम कहते आत्मा ही परमात्मा है, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हम मंदिरों में जाकर ये क्यों गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अब सत्य क्या है? मैं ही परमात्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा परमात्मा की संतान है? व्हाट इज ट्रुथ? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है। अगर संतान है कहना सत्य है, तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने कहा। आज जब भी संसार के अंदर किसी भी आत्मा के बारे में वर्णन होता है, कई प्रकार की आत्माएं आ गई, कोई पुण्य आत्मा है, कोई महात्मा है, कोई धर्मात्मा है, देवात्मा है, परमात्मा है। पुण्यात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, देवात्मा अनेक है, परमात्मा एक है। परमात्माएं ये शब्द कभी ग्रामर में नहीं आता है, और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म परमात्मा नहीं कहा, देव परमात्मा भी नहीं कहा, देवात्माएं कहा, दिव्य आत्माएं। ये सब आत्माएं हैं और परमात्मा एक है जो सुप्रीम है। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, अरे सागर से जैसे बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, एक बड़ा परमात्मा है जिसके अंश होकर के हम इस संसार में आए और अंत में जाकर उसी में लीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है। सबसे पहली बात गीता में कहा, आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। तो अगर परमात्मा में मिल जाए और आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो सत्य क्या है? आत्मा अजर अमर अविनाशी कहना सत्य है या आत्मा विनाशी है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? हाँ, अजर अमर अविनाशी कहना सत्य है, ये भगवान उवाच है। तो न आत्मा का टुकड़ा होता है, गीता में कहा न तलवार उसको काट सकती है, न अग्नि उसको जला सकती है, न हवा उसको सुखा सकती है, न पानी उसको भिगो सकती है। तो न उसका टुकड़ा हो सकता है, न वो जाकर के मिल सकती है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व सदा के लिए रहता है। हर आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, तो मिल नहीं सकती है। हाँ, दिव्य आत्मा की कैटेगरी तक जा सकती है अपना प्यूरिफिकेशन करके, लेकिन परमात्मा कोई स्टेटस नहीं है जो हमने प्राप्त कर लिया। आज कोई भी इंसान पिता जैसा बन सकता है, लेकिन खुद का पिता बन सकता है? कभी नहीं। पिता जैसा बन सकता है, आत्मा भी दिव्य आत्मा बन सकती है, लेकिन परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो मैंने प्राप्त कर लिया पुरुषार्थ करके। क्लियर है? आगे बढ़े, बड़े आगे। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, पांच तत्वों की दुनिया से पार छठा तत्व जिसको कहा ब्रह्म महतत्व, जहां सब आत्माएं भी निवास करती है और जहां परमात्मा भी निवास करते हैं, जिसके लिए गीता में कहा कि मेरा धाम परम धाम है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती है, परंतु जो स्वयं प्रकाशित है वो परम धाम मेरा धाम है, भगवान वाच है। तो हर आत्मा भी जैसे आसमान में सितारा है, उस तरह से उस दिव्य लोक में, उस पर लोक में, उस निर्वाण धाम में, उस सचखंड में, उस रूहानी दुनिया में, उस सातवें आसमान में परमात्मा के सानिध्य में रहती है, मिल नहीं जाती है, लेकिन उसके सानिध्य में, जिसको मोक्ष कहा, मुक्ति कहा, उस स्टेज तक जा सकती है। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं है, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। हमने अज्ञानता के कारण दो दो बातें कही, एक तरफ ब्रह्म ईश्वर है कहा, तो दूसरी ओर पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर ये भी कहा। सत्य क्या है? आपका विवेक किसको सत्य मानता है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है कहना सत्य है? व्हाट इज ट्रुथ? दो बातें सत्य नहीं हो सकती है, सत्य एक है। पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य है, और जहां सब आत्माएं भी रहती है उसके सानिध्य में, जिसको मोक्ष कहा, मुक्ति कहा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े जी। हाँ 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 वो बात अलग है, वो कर्म की गुह्य गति में समझाया जाएगा। आज हम सिर्फ परमात्मा के लेसन को क्लियर करते हैं, आत्मा के विषय में अभी कल हो गया और बाकी कर्म का जो लेसन आएगा उसमें आपको स्पष्टीकरण, अभी हम सब कंफ्यूज नहीं करते हैं। एक लेसन पर क्लियर करें परमात्मा, ठीक है, परमात्मा पर क्लियर करते हैं आज, एक एक लेसन अच्छी तरह से समझ ले, बाकी कर्म का लेसन जब आएगा तब उसके ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। आज परमात्मा क्लियर कर, तो पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य है, क्लियर। आगे बढ़े, चौथी बात, जब कहते हैं वो कण कण में है, सर्वव्यापी है, ये कहां तक सत्य है? क्या सचमुच आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? क्या कहेंगे? आज कोई हमें कह दे कि फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है, हमें कितना इंसल्ट महसूस होता है। सुप्रीम अथॉरिटी को हम कहे कि कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है, क्या ये अपमान नहीं है? तब मनुष्य क्या कहता है कि नहीं, हर एक प्राणी में आत्मा भी है, परमात्मा भी बाजू में बैठा है, कूड़ा कचरे में नहीं लेकिन हर प्राणी में आत्मा भी है, परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अगर हर एक में आत्मा भी है, परमात्मा भी बाजू में बैठा है, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का, परमात्मा का? तो किसने कर्म किया? गलत काम किसने किया? लेप छेप तो आत्मा पर लगता है ना, तभी तो पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहा। या तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा न कहे, पाप शरीर कहे, पाप शरीर कहेंगे? पाप शरीर नहीं कहा जाता, पाप आत्मा कहते हैं कि इस जैसा भ्रष्ट आत्मा पाप आत्मा कोई नहीं, ये कहा गया है। ये आपकी मान्यता है, दुनिया के अंदर जो शब्द लिखा जाता है पापात्मा ही कहा जाता है। मैं वही कह रही हूं ना, सारी दुनिया क्या मानती है, आपकी मान्यता अलग है, लेकिन आपकी मान्यता और दुनिया के शब्द वो अलग तो नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ये किसने कर्म किया? और अगर परमात्मा बैठा था, दया का सागर, करुणा का सागर, रहम का सागर, क्या रोक नहीं सकता था? सर्वशक्तिमान रोक नहीं सकते थे? क्यों नहीं रोका? इतना कमजोर था? आज देखो, घर में आपके बच्चे होते हैं और बच्चे आपस में लड़ने लगे, माँ बाप सामने बैठे हैं, छुड़ाएंगे या देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने? क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे आपके बच्चे ना भी हो, रास्ते में दो बच्चे आपस में लड़ रहे हो और आपने देखा तो क्या कहेंगे? बेटे क्यों लड़ रहे हो, क्या चाहिए? कहेंगे या नहीं कहेंगे? भगवान सब में बैठा है, सर्वशक्तिमान है, और उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो आत्माओं को गलत कर्म करने से रोक सके, तो बैठने का कोई मतलब क्या मतलब है? आज हमें कोई बात पूछता है या बताता है, हम नहीं जानते हैं तो क्या कहेंगे? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में, ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कभी नीचे वाला जाने कहा कहा, ऊपर वाला कहा, तो ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? सर्वव्यापी कौन है और ऊपर वाला कौन है? आज गीता में जब ये वायदा दिया, यदा यदा ही वायदा दिया है ना कि अधर्म के समय पर मैं आऊंगा, अगर वो यही है तो कौन आएगा? या तो गीता के ये महावाक्य गलत है, अगर वो यही है, यही सत्य है, तो फिर ये वायदा गलत है कि अधर्म के समय पर मैं आऊंगा। आज देखो प्रकृति के अंदर भी एक अग्नि में आप लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, एकदम लाल और गर्म हो जाएगा संग का रंग। परमात्मा गुणों में अनंत और वह सर्वव्यापी है और उसके कोई गुण हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं आज की दुनिया में। सच पूछो तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, शैतान सर्वव्यापी है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ ये सर्वव्यापी है, शैतान सर्वव्यापी है। और अधर्म के समय पर शैतान ने यही कहा था, मैं भगवान हूं, कहा था कि नहीं कहा था? और उसी को लोगों ने सत्य मान लिया और कहा हां भगवान सर्वव्यापी है। अरे भगवान सर्वव्यापी है ही नहीं, शैतान सर्वव्यापी है, तभी इतने कुकर्म आज संसार के अंदर हो रहे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी होता था तो इतने कुकर्म नहीं हो सकते थे, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। और इसीलिए जब प्रहलाद ने भी कहा था कि भगवान मेरे दिल में है, मुझे नजर आते हैं, ये उसका प्यार था। मीरा ने जब कहा अरे जहां देखूं वहां तू ही तू है, ये भाव था। कोई सिद्धांतिक रूप में ये माइक में परमात्मा है इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा है इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा है। इसीलिए एक भाव बहुत ऊंची चीज है, उस भाव को लेकर चलना हम भी स्वीकार करते हैं, हम भी मानते हैं। आज हम अकेले जा रहे होंगे, कोई कहेंगे बहन जी आप अकेले, हम कहेंगे नहीं भगवान मेरे साथ है, ये भाव है। और उस भाव को लेकर चलना ये अति उत्तम है, इसकी मनाही नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक रूप में मान लेना कि सब में ईश्वर है, अरे सब में ईश्वर नहीं, सब में शैतान है, सिद्धांतिक रूप में। और मैं समझती हूं मेरे साथ आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि सर्वव्यापी कौन है आज दुनिया के अंदर, शैतान है या ईश्वर है? हां भाव जरूर है और उस भाव को हम सभी लेकर के चल रहे हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। ये भावना रखना बड़ी ऊंची बात है और इस भाव को कोई नकार नहीं सकता है, इस भाव को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन जो सिद्धांतिक बात भी आई कहां से आई कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कहां से आई? तो जिस तरह से आज एक छोटा बच्चा होता है जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है और उस समय मां को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए, तो मां क्या करती है उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा, ये गाय उठा के ले जाएगी। और बच्चा उस बात को सत्य मान लेता है और इसीलिए घुटना करते हुए दरवाजे तक आता है। जैसे ही कुत्ता या गाय को देखेगा क्या करेगा, अंदर आ जाएगा वापस और खुश होता है, आई एम सेफ, प्रकट करता है मैं सेफ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई कुत्ता उठा के नहीं लेके गया। लेकिन यही बच्चा जब 5-7 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी मां पर कि मेरी मां भी कितनी भोली है, इतना भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। हंसते हुए बाहर चला जाता है और कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं लेके आया हूं। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह मिडिल एज में भी कुछ लोग ऐसे आए जो पाप की ओर प्रेरित कर रहे थे लोगों को, और महान आत्माओं ने उन आत्माओं को पाप कर्म से बचाने के लिए ये बात जरूर कही कि देख इंसान पाप करेगा तो ईश्वर तुझे देख रहा है, क्योंकि वो सब जगह है और मनुष्य डरता था, पाप नहीं करता था। कोई उसको प्रेरित भी करता था तो क्या कहता था, अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में आप किसी को कहो कि भगवान तुझे देख रहा है, क्यों इतना पाप कर रहा है, तो क्या कहता है मनुष्य, वही मनुष्य क्या कहता है, अरे भगवान देखता है तो देखता क्यों है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो छुड़ा सकता है। और वही डायलॉग रिपीट करता है, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, और इसलिए पाप करता ही चला गया। वो डर भी नहीं रहा, अगर उसको कहा भगवान तुझे देखता है तो क्या कहता है, कोई बात नहीं, देखता क्यों है, वो तो छुड़ा सकता है ना मुझे, ये डर भी नहीं रहा, ये डर भी नहीं रहा। तो इसीलिए कहा सर्वव्यापकता की बात भी इसलिए कही गई थी मनुष्य के कल्याण के लिए। जो महान आत्माओं ने ये बात कही शास्त्रों में, ये इंसान के कल्याण के लिए कही थी। लेकिन सिद्धांतिक रूप में बैठकर उसकी पूजा करने के लिए नहीं कही गई थी कि एक एक चीज की बैठ के पूजा करते रहो आप, ये अंधश्रद्धा नहीं फैलाई थी उन्होंने, वो महान आत्माओं ने नहीं फैलाई थी। लेकिन मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि वो उस बात को सिद्धांतिक लेवल तक ले आता है और इसीलिए वो हर एक की पूजा करने लग जाता है। आज हमें पुनः उस बात के भाव को लोगों के सामने स्पष्ट करना होगा ताकि उस अंधश्रद्धा से हम उनको बाहर ले आ सके, क्योंकि जितना हम ये पुण्य का कार्य करेंगे तो ये पुण्य का कार्य भी, कहा जाता है ना सही रास्ता दिखाना, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो मैं पुनः उन मनुष्य आत्माओं को जो इस अंधकार में चले गए हैं उसको वहां से निकाल करके सही रास्ते पर ले आना होगा कि सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। मेरे साथ आप स्वीकार करते होंगे उस बात को, स्वीकार करते हैं आगे बढ़े, क्लियर। पांचवी बात, जब हम कहते हैं निराकार है, नाम है न रूप है न आकार है, नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है, हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसमें चक्रवात दिखाना है तो दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है। जो हवा का आकार है नहीं है, उसको भी अपने चित्र के अंदर ढाल देता है। शांत प्रकृति दिखाना है तो वो भी दिखा सकता है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर आ गया। कहते जैसे हवा चली नहीं रही है, एकदम शांत प्रकृति है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है। तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है नहीं है। तो क्या स्वयं ईश्वर नाम रूप आकार बिना होगा? नहीं, उसका भी अपना नाम रूप आकार है, लेकिन मनुष्य सदृश नहीं है, मनुष्य सदृश नहीं है। तो फिर कौन सा है? जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता, आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी परम ज्योति है। जिसकी पूजा भारत के अंदर ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई, ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, जिसको नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। शिव माना बिंदी, शिव माना सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा। शिव माना जो सबसे आकर्षण मूर्त, आकर्षणमय मूर्त, आकृष्ट करने वाली, और इसीलिए कहा कि वो शिव परमात्मा की पूजा आज भारत भर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम में भी के रूप में भी होती है। और द्वादश ज्योतिर्लिंगम के अलावा भी भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो। नॉर्थ में जाएंगे अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत भर में जैसे कहा कोई गांव भी ऐसा नहीं है जहां महादेव जी का मंदिर ना हो। देवों का भी देव महादेव, और जितने भी मंदिरों के नाम है वो भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। इतने अनंत नाम किसी के नहीं है, कोई देवी देवताओं के नहीं है, जितने परमात्मा के हैं। परमात्मा की पूजा सभी देवों ने भी किया। रामेश्वरम में श्री राम ने जिसकी पूजा की, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की, तो देवियां उनको कहते ही है शिव शक्तियां, है ही शिव की उत्पन्न की हुई शक्ति। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। और इसीलिए जहां पर भी शिव का मंदिर बनता है, आप सब तो अनुभवी ये मालूम होगा कि शिव का मंदिर जहां बनता है तो शिव लिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं को द्वार से लाया जाता है, लेकिन एक परमात्मा शिव ही है जिसको अवतरित किया जाता है, क्योंकि वो भी इस संसार में अवतरित होता है। इसीलिए कहा ऊपर से गुंबज नहीं लगाया जाता है, ऊपर से उसको उतारा जाता है। बाकी सभी देवी देवताएं इस संसार में अगर आए तो द्वार से आए, द्वार से आया या नहीं, कोई ना कोई मां के गर्भ से आए। लेकिन जो डायरेक्ट अवतरित होते हैं और सीधा परकाया प्रवेश करते, वो एक ही परमेश्वर है जो देवों का देव है। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते अज्ञानतावश, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक है आकारी देव पुरुष, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, जहां दोनों का ऑक्यूपेशन ही अलग है, एक है भोलेनाथ सबका कल्याण करने वाले और दूसरे के लिए कहा तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाता है। एक प्रलय नाथ है, कल्याणकारी भोलेनाथ है। नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था जिसका ध्यान शंकर को भी करना पड़ा? कैलाश पर्वत पर जाकर उसने ध्यान किया, शंकर जी को पूरे परिवार सहित दिखाया, मां पार्वती ये दो बच्चे हैं, गृहस्थी दिखाया और सब मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ में भी कहा जाता शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई, जिसके साक्षी वो दो कबूतर है। तो शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई? इसका मतलब अमरनाथ और शंकर एक है या अलग है? क्या कहेंगे? अलग है, स्पष्ट है। कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान किया, कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, वहां बैठ करके उसने भी ध्यान किया। शंकर ने क्यों किया? क्योंकि शंकर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति अपने में होनी चाहिए, और वो शक्ति कहां से प्राप्त होगी? एकाग्रता से, ध्यान से। इसीलिए उसने इतना साल ध्यान किया। तो इसीलिए कहा कि दोनों एक नहीं अलग। हम ओम नमः शिवाय कहते, ओम नमः शंकराय कभी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। एक देव है तो एक परमात्मा है, दोनों का अंतर है। भारत से बाहर जाओ इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन काबा में पवित्र पत्थर रखा है, जिसको कहते काबा का पवित्र पत्थर। और ये काबा के पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है कि जब इस्लाम धर्म में ईश्वर को लेकर मतभेद हुआ, तब कहा जाता ऊपर से ये पत्थर गिरा था, जिसको मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद अपने हाथों से मक्का में स्थापित किया था और आकाशवाणी हुई थी, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। इसीलिए जो भी मुस्लिम हज पर जाता है, हज पर हर कोई नहीं जा सकता, हज पर जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज करने जाता है वो वहां जाने के बाद क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है और सात बार इस पत्थर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है, परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और किसी मस्जिद में नहीं होती है। अर्थात कि ये सात बार जो परिक्रमा करते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा है हे परवरदिगार नूरे इलाही। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। कबूल करने वाला कौन? नूरे इलाही, जिसको उन्होंने कहा अल्लाह नूर है। नूर का मतलब, नूर माना तेज प्रकाश, ज्योति माना तेज प्रकाश। हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही है, अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, कहा जाता मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले दो पत्थरों पर, उस समय मोसेस ने पूछा था कि जब मैं आपके ये 10 कमांडमेंट्स लोगों के सामने लेकर जाऊंगा, वो मुझे पूछेंगे ये किसने दिया, तो मैं क्या बताऊं, आपका नाम क्या है? तब वो परम प्रकाश कहता है यहोवा। यहोवा का मतलब है द सुप्रीम लाइट। इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। परमात्मा प्रकाश है। आज भी जब कहा जाता है कि जीसस को क्रूसीफाई कर रहे थे, क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस समय भी उसने अपनी अंतिम प्रार्थना में भगवान से यही कहा हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। हे प्रभु किसको कहा? आज भी वेटिकन चले जाओ, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहां पोप की गद्दी है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, जीसस की प्रतिमा नहीं मिलेगी, अखंड ज्योति स्वरूप लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने क्या कहा? बहुत स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक नूर, एक नूर, अजोने, जो निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता, अकाल मूरत है। बहुत स्पष्ट। और इसीलिए कहा जाता गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे बढ़े, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो कहा जाता सिद्ध शिलापति, सिद्ध शिला, जो सर्वश्रेष्ठ है, और उस परमात्मा के सानिध्य में जाने की तीन बातें बताते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, दर्शन शास्त्र में जो बातें बताई गई है वो आचरण में लानी चाहिए, और चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी उस सिद्ध शिला के सानिध्य में जा सकते हैं। महावीर ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, हमने कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, न 24 तीर्थंकरों ने कहा। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने, वो भी ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकुन शेकी। और बौद्ध लोग कहते हैं इसके सामने बैठ के हम ध्यान करते हैं और उसके ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। चिंकोन शेकी का मतलब है शांति का दाता, शांति का दाता। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता है पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेके आए थे और आज भी उनके मंदिर को कहा जाता अग्यारी, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, जो अखंड ज्योति स्वरूप है। तो पहली बात, सर्वधर्म मान्य कौन है, जिसको सभी देवों ने भी स्वीकार किया, सभी धर्म वालों ने भी स्वीकार किया, भले नाम अलग अलग दिए, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, कभी नहीं कहा, हमने उसको भगवान बना दिया। तो हम रास्ता भूले कहां से, जब ये सब एक ही बात कह रहे हैं तो हमने कहां से गफलत खाई, हम कहां से रास्ता भूल गए। सोचने की बात है, क्या हम पुनः वापस एक रास्ते पर नहीं आ सकते, हम वापस एक रास्ते पर नहीं आ सकते। जब देवों ने भी उसको स्वीकार किया, जब सभी धर्मों ने भी उसको स्वीकार किया, तो हम उसके नाम पर लड़ क्यों रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ये मेरा धर्म तेरा धर्म, आज धर्म के नाम पर कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यही बताता है राह भूले, राह भूले या नहीं भूले। अगर राह नहीं भूले होते तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तभी कहा, अगर लड़ाई झगड़ा इतना है ईश्वर के नाम पर, तो शैतान सर्वव्यापी है जो सबका दिमाग घुमा रहा है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी होता वो सबका दिमाग घुमाता और एक करता। शैतान घुमा घुमा कर अलग कर रहा है और हम समझ ही नहीं पा रहे, और फिर भी हम एक ही बात कह रहे हैं, ईश्वर सर्वव्यापी, ईश्वर सर्वव्यापी है। ये तो हिरण्यकश्यप वाली बात हो गई है ना। अरे गीता में जब कहा कि यदा यदा ही, यानी हर चतुर्युगे में एक बार आता, हर चतुर्युगे, चतुर शब्द निकलकर युगे युगे कर, चलो अगर युगे युगे भी कहे तो चार बार आना चाहिए, तो दस अवतार दिखा दिए। अच्छा, दस अवतार में भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो चौबीस अवतार दिखाए, और चौबीस अवतार में भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो कण कण में। तो पहले तो हमें ये समझना है, एक बार आया, चार बार आया, दस बार आया, चौबीस बार आया, या कण कण में है ही है। व्हाट इज ट्रुथ, सत्य किसको कहेंगे, किसको सत्य कहा जाए। सर्वधर्म मान्य, वही सर्वोच्च शक्ति जिसके तरफ सभी ने अपनी उंगली का इशारा किया, ऊपर वाला। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सुखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्व संबंध उसी के साथ जुड़ सकते हैं, वही परमेश्वर है। जिसका कोई माता पिता गुरु बंधु नहीं है, वही सभी चक्रों से पर है, अजन्मा है। अकाल मूरत है, अकर्ता भोक्ता है, जो दुख हरता सुख करता है, दुख हर करके सुख देने वाला है, सभी चक्रों से ऊपर है और सर्वज्ञ है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी। बीच में एक आंख होती है, अर्थात त्रिनेत्री मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, और उसकी पूजा में तीन पत्र के बैल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, अर्थात जो तीन मूर्तियों के भी रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जीओडी गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। सत्य ज्ञान, कल्याणकारी और सुंदरम, आकृष्ट करने वाला, तो सत्यम शिवम सुंदरम वही एक है। और आगे जाए, सर्व गुणों में अनंत है, अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप, जिसकी अनंत महिमा है, और अनंत महिमा होने कारण सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी का भी परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, फिर आईडी चाहिए, फोटो वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। आज परमात्मा के सत्य स्वरूप को भी हमने समझा इन्हीं पांच बातों के आधार पर, जिसका नाम है सदाशिव, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, उसका स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप नूर प्रकाश अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप। और इसीलिए तो जब गीता में भी अर्जुन को पहला साक्षात्कार हुआ विराट रूप से, पहले हजारों सूर्य से तेजोमय, जिसका तेज स्वयं अर्जुन भी सह नहीं सका, और कहा बस करो प्रभु, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा। अनंत प्रकाशमान। क्वालिफिकेशन पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वधर्म, सर्व गुणों में अनंत, ये पांचों बातें जो कसौटी है उसी के साथ लगती है और किसी के साथ नहीं। और उसका निवास स्थान एड्रेस, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जिसको परम धाम, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्म महातत्व, सचखंड या सातवां आसमान, रूहानी दुनिया, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए हैं, जहां वो रहते हैं। और कर्तव्य, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब परमात्मा अवतरित होते हैं। साधारण तन का आधार लेते हैं, जिस कारण मूढ़मति मनुष्य पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसके यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर उसकी शरण को ग्रहण करता है। तो यह है परमात्मा का संपूर्ण परिचय। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी कोई प्रश्न हो तो अलग से मिल सकते हैं, अलग से मिल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यह आपका ही प्रश्न हो, बाकी का नहीं हो, तो हम सबका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी दो मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे और फिर चलेंगे हम।